पिता परमेश्वर बहुत ही दीनता के साथ और नम्रता के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, इस दुनिया में आपने हमको अकेला नहीं छोड़ा है, आपने हमको एक सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको दिया है, जो ना तो कभी हमें छोड़ता है ना कभी हमें त्यागता है, वो हमेशा हमें उत्साहित करता ताकि हम यीशु के करीब आते चले जाएं, जो हमें हर एक पाप के बारे में हमें चेतावनी देता है, पाप भरी आदतों के बारे में हमें चेतावनी देता है और हमें हमारी मदद करता ताकि पिता का प्रेम हमारे अंदर बढ़ता चला जाए और हर एक अंधकार की देखी अंधे की ताकतें जो हमको आपके वचन को पढ़ने से समझने से उस पर चलने से रोकते हैं, उन तमाम बातों को यीशु आपके नाम से दूर करते हैं। आप हमारी मदद करें वचन को समझने में उस पर चलने में, यीशु मसीह के नाम से। जब हम इस दुनिया में हैं तो कई बार ऐसा होगा हमें दो प्रकार की ठोकर हमेशा लगती है, एक कई जैसे हम जा रहे हैं तो नीचे कुछ जमीन भाई कुछ एकदम से चलते चलते क्या हुआ ठोकर लग गई या गिर गए या और गिर के संभल गए, हुआ कभी ऐसा नहीं हुआ है, हम सबके साथ तो हुआ होगा, ये कभी चोट भी लग जाती है, सर्दियों के टाइम में ऐसे ठोकर लगती तो बड़ी तेज लगती है ना, गर्मी के टाइम में थोड़ा दर्द तो होता लेकिन उसको हम सह लेते, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा। और दूसरी जो ठोकर होती है जो हम भाई अपने जीवन के अंदर खाते हैं, भाई गलतियों के कारण ठोकर खाते हैं या कोई हमको ठोकर खिला देता है, ठीक है, क्या कारण है इस दुनिया के अंदर भाई हमारे जीवन के अंदर भाई ठोकरें जीवनों के अंदर ठोकरें लगती हैं, उसका कारण यही है कि या तो हमारे साथ भाई अच्छे लोग हैं हमारे साथ में या ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, उन लोगों के कारण हमारे जीवन में ठोकर लग सकती हैं। और वो ऐसे लोग क्यों होते हैं, क्या कारण है कि भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के जीवन में ठोकर का कारण बन जाते हैं। उसके अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जो भाई जानबूझ के ठोकर का कारण ठोकर देते हैं, एक वो लोग होते हैं जो भाई अनजाने में ठोकर भाई इनडायरेक्टली भाई कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती जिसमें वो नहीं चाहते ठोकर का कारण बने लेकिन वो ठोकर का कारण बन जाते हैं। और हम इस चीज को अपने जीवन में देख सकते हैं, हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हों जो जानबूझ के किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हों, हो सकता है कि नहीं पता लेकिन फिर भी ठोकर का कारण बने, और हम इस चीज को भी देखेंगे। और यहां पर मेरे साथ निकालें आप जैसे 42 से हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम अगर आपने ध्यान दिया होगा, हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया का राजा कौन है, कौन है इस दुनिया का राजा, शैतान है। और शैतान को क्या पसंद है, पाप पसंद है, क्या पसंद है, शैतान को पाप पसंद है, शैतान को भाई लोगों की बलि पसंद है, शैतान चाहता है इस दुनिया के अंदर तमाम प्रकार की बुरी बुरी बातें होती रहें, भयानक बातें होती रहें, शैतान को तमाम बातें उसको पसंद है। लेकिन उसके राज्य में परमेश्वर ने उसके राज्य चल रहा है, थोड़े समय का उसका राज्य है, लेकिन उस महान उस राजा ने प्रभु यीशु मसीह ने उसके राज्य में से हम कुछ लोगों को चुन लिया, क्या कर लिया, हम कुछ लोगों को चुन लिया और चुनकर हम अंधकार में थे लेकिन हमको क्या बना दिया, ज्योति बना दिया, क्या बना दिया, हम ज्योति बन गए और आसपास सब जगह अंधकार है और वो अंधकार का प्रभाव हमारे पर उस प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार से अंधकार में रहने वाले लोगों के ऊपर होता है, लेकिन फिर भी ध्यान दें फिर भी हमारे पर इस संसार का प्रभाव कहीं ना कहीं रहता है, हमारे पर हमारे व्यवहार के ऊपर हमारे शरीर के ऊपर इस संसार का, क्यों, क्योंकि हम उसके राज्य में हैं, सब जगह अंधकार है। सोचो 90% या 99% पृथ्वी के ऊपर अंधकार है और 1% जो है 1% क्या है, ज्योति में है और उस ज्योति के ऊपर भी उसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। और आज ये हम देखेंगे ठोकर के बारे में देखेंगे, ठीक है, हो सकता है हम किसी के लिए जानकर अनजाने में, यीशु ने हमको ज्योति बनाया है, क्या बनाया हमको, यीशु ने हमको ज्योति बनाया, यीशु ने हमको नमक बनाया है, लेकिन हो सकता है कि भी चुन लिया है लेकिन फिर भी हम जानकर या अनजाने में किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं और बन चुके हैं, हो सकता है लोगों के लिए बन चुके हैं, लोगों ने ठोकर खा ली है और हमको नहीं पता, हो सकता है हमको पता भी हो, ठीक है। तो मेरे साथ निकालें 42 पद से, कोई मेहरबानी से आराम आराम से पढ़े, जहां मैं बोलूं वहां रुक जाए।
जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए।
ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं कोई इन छोटों में से, ये छोटे कौन है, ये छोटे बच्चों की बात नहीं हो रही है, ये उम्र में छोटों की बात नहीं हो रही है, ये जो छोटों की बात हो रही है, ये जो भाई विश्वास में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, भाई कलीसिया में आ रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है, ये मसीह लोगों की बात हो रही है। ये बोल रहा है कि भी वचन ये बोल रहा है उन विश्वासियों से जो कलीसिया में आ रहे हैं, भाई हम सब कलीसिया में आ रहे हैं, प्रभु का वचन उनसे बोल रहा है विश्वासियों से कि भी तुम जो विश्वासी हो, तुम जो यीशु पे विश्वास करते हो कि भाई यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, भाई तुम जो विश्वास करते हो तुम्हें इस चीज में सावधान रहना है, सचेत रहना है कि तुम किसी के लिए ठोकर का कारण, अगर तुम किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हो तो प्रभु का वचन नहीं कह रहा है कि किसी के लिए भी, किसी परिवार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए यदि ठोकर का कारण बन रहे हो तो यहां पे लिखा है कि भी एक बड़ी चक्की का पाट, क्या है
चक्की,
रोज बात क्या है, एक बड़ी चक्की का पाट कि कहां पे कर दी, कहां पे लटकाया जाए,
गले में,
उसके गले में लटका के क्या कर दिया जाए, कहां पे डाल दिया जाए। अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तैरने में क्या होगा, समुद्र में अगर ऐसा चक्की का पार्ट डाल के अगर समुद्र में डाल दिया तो क्या वो तैर के ऊपर आ जाएगा,
जाएगा।
हैं, कितनी भी कोशिश कर ले क्या हो जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रांग बात है जो यीशु मसीह बोल रहे हैं, मतलब कि अगर कोई ठोकर का कारण किसी के लिए बन रहा है तो उसको क्या कर देना चाहिए, उसके उसके गले में चक्की का पार्ट लिपटाकर उसको कहां पे डाल दिया जाए, समुद्र में, ताकि वो किसी और के लिए ठोकर कारण ना बने, किसी और विश्वासी के लिए, किसी और परिवार के लिए ठोकर कारण ना बने। अब यहां पे सवाल, यहां पर ये उठता है सवाल आपके अंदर हो सकता है कि भैया कैसे हम पहचाने कि हम किसी के लिए ठोकर कारण बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये ध्यान दें आप, कैसे पहचाने, किस प्रकार से बचाने कि भैया मैं इस प्रकार से नहीं चाहता कि कोई मेरे गले में भाई क्या करे, चक्की का पार्ट लटकाकर मुझे समुद्र में डाल दे। कौन कौन चाहेगा यहां पर, कुंवर भाई है, हैं, कोई चाहेगा, अवतार भी है, कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि हम सबको क्या पसंद है, कई लोग तो ये भी प्रार्थना करते हैं कि भैया प्रभु मेरे को ना भाई डुबा के मत मारना, है ना, या जला के मत मारना, एक्सीडेंट में मत मारना, ठीक है। अब सोचो यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि कोई भी अगर ठोकर कारण बन रहा है तो उसके गले में चक्की का पार्ट लटका के कहां पे डाल दिया जाए, समुद्र में। अब कैसे हम कैसे हम कैसे हमें पहचाने कि क्या हम इस श्रेणी में हैं या नहीं है, सोचें, ठीक है। हम सब स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, हम सबके पास स्मार्टफोन है नहीं है, अब हम स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और स्मार्टफोन के अंदर अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं, और हमें पहचानना है कि अच्छी चीजें क्या है और बुरी चीजें क्या है। अगर हम स्मार्टफोन के अंदर कोई बुरी चीजें देख रहे हैं, कोई भी बुरी चीज देख रहे हैं, कोई भी अश्लील तस्वीर देख रहे हैं या अश्लील चुटकुले हम देख रहे हैं या अश्लील कोई भी चीज देख रहे हैं, और उसको अगर किसी भाई व्यक्ति को, चर्च में आने वाले, कलीसिया में आने वाले व्यक्ति को पता चल जाए, ओ ये भाई ये बहन ये प्रकार से देख रहा है और वो नया विश्वासी है या विश्वास में आ रहा है, वो कलीसिया में आ रहा है, वो कोई भी विश्वासी है, तो व्यक्ति क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति जो देख रहा है वो किसके लिए ठोकर कारण बन रहा है, दूसरों के लिए, किसके लिए, किसी दूसरे के लिए। भाई टीवी देखना बुरा नहीं है, टीवी देख सकते हैं, लेकिन सोचें एक विश्वासी जो सुबह से लेकर रात तक वो टीवी में लगा पड़ा है, टीवी टीवी देख रहा है, ये सीरियल देख रहा है, वो सीरियल देख रहा है, एक सीरियल खत्म हुआ दूसरा देख रहा है, एक फिल्म खत्म हुई दूसरी फिल्म देख रहा है। और ये बात अगर किसी विश्वासी को पता चले, नए विश्वासी को पता चले, किसी कलीसिया के व्यक्ति को पता चले, तो क्या है, समझ रहे हैं आप है? कोई व्यक्ति बाइबल के अंदर मना है, शराब पीना वर्जित है, शराब नहीं पीनी, यीशु जीवन में आ गए तो शराब नहीं पीनी कोई विकल्प नहीं है। हमने अपने पापा को देखा है, बचपन से देखा, वो ऐसे करके शराब पीते हुए देखा, हमने बोतल ऐसे ले ली, ऐसे करके शराब पीते हुए देखा है। लेकिन जब यीशु मसीह जीवन में आए तो उन्होंने, वो बहुत सारे चीजों को खाते थे, धूम्रपान करते थे, शराब पीते थे, 500 की बीड़ी भी पीते थे, मैं लेकर आता था उनके लिए, हुक्का भी पीते थे, और लास्ट में उन्होंने सुरती खाना भी शुरू कर दिया था, ठीक है तमाम। लेकिन जब यीशु मसीह उनके जीवन में आए, उन्होंने तुरंत वो सारी चीजें छोड़ दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस चीज में क्या करता है, मना करता है, एक चम्मच एक फुट्टा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। जब यीशु मसीह जीवन में है तो एकदम से छोड़ना है। हो सकता है 100% में हो सकता है तुम्हें, कुछ लोग हो सकते हैं धीरे धीरे छोड़ें, ठीक है, कुछ लोग एकदम छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना है और कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई इस प्रकार के आप में फिर भी लगा हुआ है, करे जा रहा है, छुप के करे जा रहा है, भाई सबको दिखा के करे जा रहा है, पर किसी व्यक्ति को पता चल जाए जो चर्च में आ रहा है, तो क्या होगा उसके लिए, क्या बन रहा है, वो क्या कर रहा है, ठोकर कारण बन रहा है। वचन बताता है, वचन के अनुसार भाई सबसे पहले हमारे जीवन में कौन होना चाहिए, परमेश्वर कौन होना चाहिए, फिर उसके बाद कौन होना चाहिए, रॉबिन भाई के लिए अपनी वाइफ, और रॉबिन की वाइफ के लिए कौन होना चाहिए, पति, फिर उसके बाद कौन होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए। सोचो अगर ये ऑर्डर ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है, पति पत्नी में खूब लड़ाइयां हो रही हैं, चर्च में आ रहे हैं तो खूब गाना गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, ऐसे करके सबको पता चल रहा है, ओ क्या बात है। और जैसी कोई अगर विश्वासी अगर उनके घर पर गया, नया विश्वासी या चर्च में जाना वाला विश्वासी, और जाते ही देखा था भैया इनमें तो भैया खूब लड़ाइयां हो रही है, चर्च में तो बड़े बढ़िया तरीके से गाना वाना गाते हैं, तो है बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं, तो परिवार उसके लिए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। बाइबल के अंदर लिखा है गाली देने वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा, कहां नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा गाली देने वाला व्यक्ति। बाइबल के अंदर एकदम क्लियर अगर बोल रहे भैया मुझे दिखाओ, दिखा भी दूंगा, कहां पे लिखा है, गाली देने वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर सोचो यीशु मसीह जीवन में आ गए, यीशु मसीह जीवन में आ गए और यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर हैं, और आप लगातार प्रभु कले सबको पता चल गया कि हाँ ये व्यक्ति विश्वासी है, सोचे आप किसी नए विश्वासी के साथ या किसी विश्वासी के साथ कहीं जा रहे हैं और एकदम से कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, और ऐसी परिस्थिति में वो जो अच्छे शब्द हैं मुंह से बाहर निकल गए उसके सामने, वो तो गाली भरे और एक के बाद एक निकलते चले गए गाली। वो जो साथ में जो नया विश्वासी है या विश्वासी है नया बहन, क्या हो जाएगा, वो चौक जाएगा, और उसके लिए क्या बन सकते हैं, ठोकर कारण। इस प्रकार से बहुत सारी बातें देखें आप, कौन सी हम कौन सी ऐसी बात है जिसमें हम दूसरे के लिए ठोकर कारण बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं या बन चुके हैं तो प्रभु से पश्चाताप करें, तो बोले प्रभु मैं किसी प्रकार से किसी के लिए ठोकर कारण नहीं बनना चाहता हूं, मैं एक आशीष का कारण बनना चाहता हूं। ठीक है, प्रभु ने हमको जो जवान दिए ना, किस लिए दिए पता, किसी ने बोला है कि थप्पड़ से ज्यादा ना शब्दों की मार बड़ी तेजी से लगती है ना, कोई लोग बोलने में इतने कड़वे होते हैं, ओए मैंने लोगों को देखा है वो उनके शब्द इतनी तीर से भी तेज लगते हैं कि मार तो इतनी देर मार से नहीं लगेंगे, बड़े जहरीले निकलते हैं, जब जहर बड़े शब्द निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इन शब्दों को किस क्या करने के लिए निकालना है अपने, जब प्रभु ने हमको जुबान दी है बोलने के लिए, इससे क्या करना है? दूसरों के लिए आशीष के लिए शब्द निकलने, दूसरों के लिए प्रार्थना भरे शब्द निकलने, कोसने के लिए नहीं है ये मुंह प्रभु ने नहीं दिया है, श्राप देने के लिए प्रभु ने मुंह नहीं दिया है, किसी के बारे में बुरी बात कहने के लिए प्रभु ने मुंह नहीं दिया हमको, किसी की चुगली करने के लिए मुंह नहीं दिया प्रभु ने हमको, प्रभु ने जब मुंह दिया हमको प्रभु की आराधना करने के लिए, दूसरों को उत्साहित करने के लिए, दूसरों को इंकरेज करने के लिए, दूसरे अगर निराश है हताश है परेशान है उनको प्रभु के वचन से उत्साहित करने के लिए प्रभु ने मुंह दिया है। लेकिन इस मुंह का इस्तेमाल क्या करते हैं ज्यादातर, किस चीज के लिए निकलता है? अगर ऐसा हो रहा है तो हम दूसरों के लिए ठोकर कारण बन सकते हैं या बन चुके होंगे। और यहां पे लिखा है कि अगर कोई इनमें से छोटे में से छोटे के लिए ठोकर कारण बन रहा है तो उसकी गली में गले में चक्की का पाट लटकाकर उसको कहां पे डाल दिया जाए? समुद्र में। कहां पे रोहित भाई? समुद्र में। और मेरी यही प्रार्थना कि प्रभु मैं हमारी कलीसिया के लिए यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु हमारी कलीसिया के लोगों को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए, अनंत जीवन के लिए चुने, इस्तेमाल करें, अपने पैरों पर आत्मिक रूप से खड़ा करें। और देखो आगे, देखो यीशु मसीह अब आगे कुछ उदाहरण दे रहे हैं।
यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल।
क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो क्या कर डाल?
काट।
आगे देखिए और भी बता, काटने के लिए बोल रहे हैं यीशु मसीह।
टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती।
ठीक है भाई, नरक के अंदर क्या है? कीड़े, जहां का कीड़ा
नहीं मरता।
भाई कीड़ा नहीं मरता, कितने कितने पैर से मारने, यहां तो कॉकरोच को, कॉकरोच को पैर से मार देते हैं, कान खुजने को किससे मार देते हैं? पैर से मार देते हैं, है ना, मच्छरों को कैसे मार देते हैं, ऐसे करके मार देते हैं, वहां पर नहीं मरेंगे, वहां पे नहीं मरेंगे, वहां के कीड़े नहीं मरेंगे, यहाँ की, वहां यहाँ की आग तो फूंक मार के बुझा, भाई बुझा देंगे, भाई ऐसे किया गैस की उसको बुझा दिया, लेकिन वहां की आग में कितनी फूंक मार लो और सुलगेगी, वहां की आग बुझेगी नहीं। हाँ,
यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है।
ठीक है, पहले क्या काटने के लिए बोल रहा है?
हाथ।
अब दूसरा क्या काटने के लिए कह रहा है? हाँ, आगे देखिए
कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती।
हाँ।
यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए।
ठीक है, पहला क्या काटने के लिए बोला है?
हाँ।
दूसरा क्या काटने के लिए बोल रहा है?
हाँ।
तीसरी क्या निकालने के लिए बोल रहा है?
हाँ
हाँ, हाँ।
जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग में नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उससे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो।
ठीक है, यहाँ पर जो बात ध्यान दें आप, पहला के काटने के लिए बोल रहा है,
हाँ।
दूसरे के काटने के लिए बोल रहा है,
हाँ।
और तीसरी क्या निकालने के लिए बोल रहा है,
हाँ।
अब यहाँ पर जो बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि तेरा हाथ ठोकर कारण, यदि तेरा हाथ तुझसे क्या करे, भाई तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो तू उस हाथ को क्या कर डाल, पैर ठोकर खिलाए तो उस पैर को क्या कर डाल, अगर तेरी आंख ठोकर खिलाए तो उस आंख को क्या कर डाल। ठीक है, ध्यान में आ गया ना आपके? अब अगर आपका हाथ, हमारा हाथ अगर कुछ ठोकर खिलाए तो हाथ को क्या कर देना है, हैं? दीदी हैं? संदीप भाई काट देना है। अब पैर ठोकर खिलाए तो रोहित भाई क्या कर देना है? अरे भैया मैं इतने दिनों से जिम जा रहा हूँ पैर को थोड़ा मसल अच्छी बनाने के लिए, तुम काटने की बात कर रहे हैं। यहां पर वो लिटरली काटने की बात नहीं हो रही है, ओ काट देना है, अच्छा हाथ काट देना, पैर काट देना, आंख निकाल देना, इसकी बात नहीं हो रही है। ध्यान दे यहां पर, यहां पे जो बात यहां पर हो रही है, अब जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गए ना, यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर है, यीशु मसीह ने हमको आनंद जीवन के लिए चुन लिया है, जब यीशु मसीह ने हमको अनंत जीवन के लिए चुन लिया है, हमारा पहले राजा कौन था जब यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं था?
शैतान
था। लेकिन जब यीशु ने हमको चुन लिया तब हमारा राजा कौन है? कौन है हमारा राजा? जब यीशु मसीह हमारा राजा है तो मतलब ये जो शैतान क्या चाहता है, हमारा जीवन किस में रहे? पाप में रहे। किस में रहे? लेकिन जब यीशु मसीह हमारा राजा बन गया है तो यीशु मसीह क्या चाहता है, हमारा जीवन पाप में रहे या नहीं रहे? यीशु मसीह नहीं चाहते। तो यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है पाप की। जो पाप तेरे जीवन में बना हुआ है, हाथ पैर आंख कहां से चलती है? हमारे अंदर से। चलाने वाला कौन है? हमारा दिमाग और हमारा हृदय। बात यहां की नहीं हो रही है, बात हो रही है अंदर जो छुपा हुआ पाप है, अंदर जो छुपा हुआ जो पाप है, जो हमारे हाथ को, हमारे पैरों को, हमारी आंखों को उसे पाप करवा रहा है, हमारे शरीर से पाप करवा रहा है, जो अंदर से कंट्रोल कर रहा है। ध्यान दें आप, यहां बात हो रही है उस पाप को निकालना है। वो पाप किसी प्रकार का हो सकता है, हो सकता है आंख के द्वारा पाप हो रहा हो कुमार भैया, पैर के द्वारा पाप हो रहा हो, पैर कहीं लेकर जा रहे हैं, कहीं बुरी जगह लेकर जा रहे हैं, हाथ कोई गलत काम करवा रहे हैं या मुंह कोई गलत काम करवा रहा है। ये सिर्फ उदाहरण है, तीन और भी उदाहरण है। अगर कोई भी हमारे अंदर पाप है, उस पाप पे हमें गंभीरता से विचार करना है। हो सकता है वह विचार का पाप लगातार कर रहे हो, सोचकर बोलकर। हो सकता है इस गलत का, इस हाथ को, अपने हाथों को गलत चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हो सकता है पैरों को गलत चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, शरीर को अपने गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और प्रभु का वचन कह रहा है जो भी पाप हमारे अंदर बना हुआ है उस पाप को क्या कर देना है? क्या कर देना है? क्या कर देना है? निकाल देना है। क्या कर देना है? जब जब किसी को कैंसर की प्रॉब्लम होती है, बहुत दुख का समय होता है उसके लिए, उसके परिवार के लिए, पता है। और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है, जो चीज जिसमें जब जहां पर कैंसर हो जाता है, डॉक्टर क्या करता है, उस जगह को पहले दवाई से ठीक करने की कोशिश करता है। अगर दवाई से ठीक नहीं होती तो उसको क्या करता है, अंतिम में क्या रिजल्ट निकलता है, उसको निकालना पड़ता है। और ये जो पाप है कैंसर की तरह ही है, जो भी पाप हमारे अंदर है उसको हमें क्या कर देना है? निकालना है। कोई सा पाप हो सकता है, बात बात में हम ततैया बन जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हम सही से लोगों से सही से बिहेव नहीं करते, सही से बर्ताव नहीं करते, घर में सही से बर्ताव नहीं करते। जो भी पाप है हमें क्या कर देना है? निकालना। और कोई विकल्प नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं भाई यीशु मसीह को ना एक जगह तक आने देते हैं अपने जीवन में, यीशु मसीह यहां तक आ जाओ, इससे आगे मत आना, यहां से आगे आओगे तो भाई मैं ये जो करता ना, मैं मुझे ये भी कर छोड़ना पड़ेगा, मैं ये नहीं चाहता ये चीज मैं छोड़ू। प्रभु यहां तक मत आए भाई, यहीं तक रहे, बताओ यहीं तक। यीशु मसीह यहां तक आना नहीं चाहते, यीशु मसीह पूरी तरीके से हमारे जीवन में आना चाहते हैं। हमें तमाम, चाहे कैसे भी पाप है, छुपे हुए पाप है, जिनको छोड़ना नहीं चाहते, तमाम पापों को हमको छोड़ना है। दीपक भाई क्यों छोड़ना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या बनाया है? क्या बनाया? नमक बनाया है। क्या बनाया है? क्या बनाया है? और नमक क्या करता है भाई? आजकल का जो नमक है उसका स्वाद बिगड़ता नहीं है। यहां पर बोल रहा भाई नमक का स्वाद बिगड़ने की वाली बात हो रही है। उस समय में जो नमक था उसका स्वाद बिगड़ जाता था, और उस नमक को क्या कर दिया जाता था, जिनका स्वाद बिगड़ जाता था उनको रोडों पर फेंक दिया जाता था, और लोग उस पर क्या करते थे, चलते थे उसके ऊपर। और यहां पर बोल रहा है प्रभु ने हमको नमक बनाया। नमक क्या करता है? पहला स्वाद देता है। अभी जब बहनें घर जाएंगी, घर जाके क्या बनाएंगी? खाना बनाएंगी। और खाने में अगर नमक नहीं डाला तो क्या होगा? स्वाद होगा उसके अंदर है? नमक पहले डालते हैं। और बीच बीच में मैं चेक भी करता, जब मैं बनाता हूँ खाना तो मैं बीच में चेक करता रहता हूँ कि अभी नमक ठीक है नहीं है, है ना। हम सब ऐसे करके चेक करते होंगे। पहला जो नमक है स्वाद देता है सन्नी भाई, दूसरा जो नमक है, नमक क्या करता है, सड़ती हुई चीजों को बचाता है, सड़ती हुई चीजों को बचाता है। पुराने समय में क्या होता, मछली का अचार भी बनाते थे, ठीक है, मछली इससे सड़ ना जाए उसके अंदर नमक क्या करते डाल देते थे। और जैसे कोई व्यक्ति मर जाता था उसके ऊपर नमक का लेप लगाते थे ताकि इसकी जो बॉडी है वो सड़े ना, गले ना। और यहां पर प्रभु का वचन बोल रहा है हम क्या है, नमक है। क्या है हम? नमक है। कौन कौन है जो नर्क में जाना चाहता है? ये जीवन तो थोड़ा है, हम सब मरेंगे। मरेंगे नहीं मरेंगे? हम मरना नहीं चाहते हैं। हम सबकी इच्छा पता क्या है? हम फिट रहें, जवान रहें, हैं? फिट रहें, जवान रहें, भाई सुंदरता चेहरे पे बरकरार रहे, है ना? सुंदरता चेहरे पे बरकरार रहे एकदम से, लेकिन ये हमेशा तो हो नहीं सकता है ना? धीरे धीरे क्या होगा भाई? धीरे धीरे भाई सुंदरता कम होती चली जाएगी। उसको छुपाने के लिए क्या कहते हैं, कुछ भी कर ले, फेशियल करा ले, कुछ भी लगा ले भाई, वो बुढ़ापा तो नजर आने लग जाएगा, वो झुर्रियां तो नजर आने लग जाएगी। कब तक करेंगे भैया? क्रीम भी कब तक काम करेगी? और एक ना एक दिन तो क्या होगा, क्या होगा बबीता बहन, क्या होगा भाई? एक ना एक दिन तो हमारा नंबर आएगा। और जब नंबर आएगा, यहाँ पे लिखा है जिनके जीवन में यीशु नहीं है, जिनको यीशु ने नहीं चुना है, उनको अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, नरक वास्तविक है, नरक वास्तविक है। और नरक के अंदर अगर किसी को डाल दिया गया तो वहां से वापस आ सकता है? रोबिन भाई गया तो गया, कोई पुल नहीं है वहां पर, कोई पुल नहीं बनाया कि कहां कोई रास्ता बीच में आ जाए तो उसमें से निकल जाए, नहीं। जैसे उसके अंदर बताया जाता है, अभी कैथोलिक लोगों में बताया जाता है, किसी के अच्छे कर्म है और किसी के अच्छे और बुरे दोनों कर्म है, उनको बीच में नरक और स्वर्ग के बीच में एक जगह है, परगेटरी बोलते हैं, उसके अंदर डाला जाता है। और वहां पर उसकी आत्मा ने सही काम किया, सही से जीवन दिया तो स्वर्ग, नहीं तो नरक। बाइबल नहीं बताती है भैया, मर गया इस दुनिया के अंदर, अगर मरा यीशु जीवन में नहीं है भाई, यीशु मसीह जीवन में नहीं है तो मतलब उसका जीवन पाप के अंदर व्यतीत होता रहेगा, वो पाप को करता रहेगा, वो पाप में जीवन जीता रहेगा जीवन के अंतिम पल तक। और नरक में क्या है? कीड़े। कीड़े किस चीज को पसंद है? तो कीड़े क्या करेंगे, मतलब वहां की, यहां के तो यहां के कीड़े हो सकता है भाई, मैं ऐसे कल्पना कर रहा हूं, यहाँ की कीड़े को तो हम मार देते हैं, वहां के कीड़े मरेंगे नहीं, वहां के कीड़े क्या करेंगे, काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे वहां के कीड़े। पता नहीं कैसे कीड़े, छोटे कीड़े तो होंगे नहीं, बड़े बड़े कीड़े होंगे, कल्पना करें। और सोचें आग भी है वहां पर, क्या है? और यहां पर एक बार नहीं आया, वहां पर तीन बार ही आ रहा है, यहां पर आग की, नर्क की बात हो रही है, यहां पर नर्क की बात हो रही है। नर्क वास्तविक है, नर्क के अंदर अगर डाल दिया तो वहां से वापसी अवतर भी जाकर आओगे क्या है? वहां से ना क्या कहते हैं, एक बार हम कैंप में गए थे तो वहां पर एक माइकल भैया आते हैं हमारे जैसे, पहले आते थे, तो वहां पूछा भाई, ऐसी कुछ विषय चल रहा था, वहां पूछा कि कौन कौन है जो नर्क में जाना चाहेगा? उन्होंने बोला हाँ जी हम जाएंगे, हम जाएंगे। अब उनको ये नहीं पता एक बार जो चला गया वहां से वापसी नहीं है। और प्रभु का वचन बताता है, प्रभु ने हमको नरक जाने के लिए नहीं चुना है, प्रभु ने स्वर्ग जाने के लिए चुना है, प्रभु ने हमको ठोकर खिलाने के लिए नहीं चुना है, प्रभु ने हमको आशीष देने के लिए चुना है, प्रभु ने हमको पाप करने के लिए नहीं चुना है, प्रभु ने हमको पाप से बचने के लिए, भागने के लिए चुना है प्रभु ने। यूसुफ के जीवन में जब पाप आया, जवान था, 18 साल का था जब, जिस समय में हार्मोन्स चेंज होते हैं, जब उसके जीवन में पाप आया व्यभिचार के रूप में, तो व्यभिचार करने के लिए नहीं भागा वो, व्यभिचार से दूर भागा हो। जब यीशु मसीह जीवन में है तो पाप से दूर भागना है। प्रभु का वचन बताता है कि उसने हमको नमक बनाया है, यहां पे लिखा है 49 में, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। देखो जो आग है, ये जो पद है, ये थोड़ा विद्वान लोग इसको समझाने में मतलब बहुत कठिन पद बोलते हैं इसको, क्योंकि आग की बात हो रही है और आग कहां पर है? नरक के अंदर भी है। जो आग है वो किसी को नाश करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और आग किसी को चोखा बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आग से क्या होता है? सोना क्या होता है?
चमकता है,
चमकता है, आग के अंदर ताया जाता है, समझ रहे आप? और यहां पर बताया कि भी आग से नमकीन किया जाएगा, मतलब भाई चोखा किया जाएगा। प्रभु ने हमें चमकने के लिए बनाया है, प्रभु ने हमें निखरने के लिए बनाया है, प्रभु ने हमें दुनिया में स्वाद बिखेरने के लिए बनाया है, प्रभु ने बोला कि भाई तुम दुनिया के नमक हो। क्यों, कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। क्यों यीशु मसीह के द्वारा? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से हमको क्या कर लिया? शुद्ध कर दिया, हमको खरीद लिया, हमको अपना बना लिया। और यहाँ पे लिखा है नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन किया जाएगा? अपने में नमक रखो। क्या बोल रहा वचन? अपने में नमक रखने का मतलब है ठोकर के कारण मत बनो, पाप से दूर रहो, पाप से दूर रहो और प्रभु को अपने जीवन से महिमा देते रहो। और आपस में क्या रखो? मेल मिलाप। क्या रखो? मेल मिलाप। प्रभु यहां पर लड़ाई करवाने नहीं आए, झगड़ा कराने नहीं आए। यीशु मसीह यहां पर मेल मिलाप कराने आए। जब उन्होंने हमारे पापों के लिए मरकर तीसरे दिन जब वो जिंदा हो गए, जब उन्होंने हमको पाप को क्षमा करने का हमें बता दिया कि भी पाप क्षमा सिर्फ मेरे द्वारा होंगे, जब यीशु मसीह ने हमको अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया, तो वो क्या कर रहा है? वो अलग अलग दुनिया के लोगों को इकट्ठा करके क्या कर रहा है? वो मेल मिलाप करा रहा है। वो दुश्मनों में भी वो मेल मिलाप करा देता है। वो मेल मिलाप का परमेश्वर बोलता है कि जो तुमको प्रेम नहीं करते, जो तुम्हारे शत्रु हैं उनके लिए तुम प्रेम करो, प्रार्थना करो, उनको तुम प्रेम करो। और वो मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। तो आखिर अपने जीवन को हम निहारें, अपने जीवन के बारे में सोचें, क्या हम किसी के लिए ठोकर कारण तो नहीं बन रहे? क्या हम पाप में जीवन तो व्यतीत नहीं कर रहे? पाप प्रभु ने चुन लिया, लेकिन फिर भी पाप करे जा रहे हैं, पाप में जीवन है, छुप के सबके सामने पाप कर रहे हैं। वो प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु हमें अपनी तरह नमकीन, वो हमारे हमें अपनी तरह ज्योति बनाने के लिए तैयार है। प्रभु यहाँ पर आए हुए हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक भाई, हर एक परिवार, हर एक जन को, हर एक शादीशुदा लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हर एक पर अपना अनुग्रह करें, हर एक पर अपनी दया करें, हर एक को अपनी पवित्र शांति, पवित्र आनंद से भर दें प्रभु। और हर एक को प्रभु इस प्रकार से समझदार बनाए कि किसी के लिए प्रभु सावधान रहे, किसी के लिए भी ठोकर कारण ना बने। प्रभु पाप में जीवन व्यतीत ना करें और हमेशा नमकीन पन प्रभु हमेशा बरकरार रहे और बढ़ता रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से।